بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. دیکھتے ہیں تفسیر سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 54 تک. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ایک ایسے مومن مرد کی کہانی جس نے اپنی جان تک قربان کر دی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، توحید کے لیے. اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا دین انسان کو بے حد محبوب ہو، تبھی انسان کوئی قربانی کرتا ہے نا. کسی بھی چیز کے لیے آپ قربانی تب کریں گے جب وہ چیز آپ کو بے انتہا محبوب ہو. اور یہ دین کی جو محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے جس کو محبت ہوگی نا، وہ اس کے دین سے بھی محبت کرے گا، اور جس سے محبت ہوگی اس کے لیے انسان قربانی دے گا. آپ دیکھیں، ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ اس دنیا میں کون ہوتا ہے جو اس کو محبوب ہوتا ہے؟ اس کی اولاد. پھر دیکھیں وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں قربان کرتی، بلکہ یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری اولاد کو مل جائے. نہیں، اپنے منہ کا نوالا بھی اپنی اولاد کے منہ میں ڈال دو. اتنی قربانی دیتی ہے، نیند کی قربانی، کھانے پینے کی قربانی، اپنی سیر و تفریح کی قربانی، بہت ساری قربانیاں دیتی ہے، اپنی آرام کی، اپنی صحت کی، سب قربان کر دیتی ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دین بہت پیارا ہے، ہم اس کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ جان کی قربانی یہاں پہ کوئی نہیں آپ سے مانگ رہا. یہ تو کہنا بڑا آسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے، اس کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کتنی حد تک محبت ہے؟ کبھی آپ نے اپنی کوئی خواہش قربان کر کے دیکھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر؟ اب یہ سوچ لیں کہ ہم خواتین ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بنیں سمریں، بن سمر کے باہر جائیں، سر کور کر کے باہر نکلنے کا جی نہیں چاہتا. دل کرتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، اور لوگ دیکھیں تو صحیح، ان کو کور کر لیا تو کوئی دیکھے گا کیسے؟ تو کیا پھر اس وقت کہتے ہیں، یہ دل میں بات آتی ہے کہ اللہ کی بات اوپر ہے، میرا دل نیچے ہے؟ میرا دل کیا چیز ہے؟ میں کیا ہوں؟ مجھے اللہ سے محبت ہے، میری خواہش پیچھے رہے، اللہ کی بات پیچھے نہ ہو. پھر آپ دیکھیں، جہاں پہ اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، کہیں بچے آڑے آ جاتے ہیں، کہیں شوہر، کہیں لوگ، کہیں خاندان، ہر وقت ہم اللہ کے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور کبھی اپنی ذات کو، کبھی ان تمام رشتوں کو، کبھی اپنی خواہش کو، کبھی اپنے دل کو، کبھی اپنی مرضی کو آگے رکھتے ہیں، اور دین کو آلویز پیچھے کر دیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا اس سے اگر میں کر لوں گی. آلویز کمپرومائز دین پہ ہی کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. یہ بچے کی بات اوپر نہیں جائے گی، میرے اللہ کی بات جائے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ اس رجل مومن نے کیسے ایمان کا ثبوت دیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان انسان میں جرت کو پیدا کرتا ہے. جب ایمان ہوتا ہے نا تو انسان دلیر ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے پھر. और ईमान इंसान को गैरत वाला बना देता है, उससे फिर देखा नहीं जाता कि लोग कैसे इस तरह से कर रहे हैं कि अल्लाह का इनकार कर दे, कैसे लोग ऐसे कर रहे हैं कि रसूलों की बात ना सुने, फिर गैरत आ जाती है, फिर वो जुल्म को नहीं बर्दाश्त करता, ना इंसाफी को नहीं बर्दाश्त करता। सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क है। तो देखें कैसे वो शख्स उठा और कितनी दूर से आया, एक अल्लाह की खातिर ना, एक अल्लाह की मोहब्बत और एक अल्लाह ताला की तौहीद, उसने उसको उठाया घर से और कहाँ तक भगा के आया वो, अल्लाह ताला की मोहब्बत ने उसको भगाया। कितना भागते हैं हम अल्लाह की मोहब्बत में, कितनी दौड़ें लगती हैं हमारी, कितना हम भाग भाग के अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए अपनी जान खपाते हैं। तो पढ़ लेना तो आसान है, और हाँ बहुत बड़े आला दर्जे उसको मिल गए। हम सब भी इन आला दर्जात के ख्वाहिशमंद हैं, इसके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन लगाने को कुछ भी तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। ऑलवेज हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, कभी दूर होने का एक्सक्यूज, कभी अपनी नातवानी का, अपनी कमजोरी का एक्सक्यूज, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी कोई नहीं मानता, कभी कोई नहीं मानता, कभी अपना दिल ही नहीं मानता। असल तो बात ये है, तो देख लें उसकी जुर्रत, देख लें उसकी गैरत, देख लें उसकी एफर्ट। मैंने आपको बताया था भागने में एफर्ट का पता चलता है कि उन्होंने एफर्ट की, जो कर सकते थे वो किया, चुप करके बैठ नहीं गए। हमारी एफर्ट अल्लाह ताला देखता है। वो कामयाब नहीं हुए लोगों को कन्विंस करने में, ऐसा नहीं कि लोग सारे मान गए थे। तो आप सोचें कि फिर अजर कहाँ गया, वो तो लोग किसी ने मानना ही नहीं, क्या फायदा हुआ जान देने का। नहीं, आपकी एफर्ट है दैट काउंट्स। आपने अल्लाह ताला को अपनी कोशिश करके दिखाना है, रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आपका अजर नहीं है, कोशिश की बेस पे है। पैगंबरों तक के बाज पैगंबर कयामत के दिन आएंगे, चंद एक उनके साथ लोग होंगे, चंद। लूत अलैहिस्सलाम भी सिर्फ उनकी बेटियां ईमान लेकर आई, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम का अजर तो नहीं खत्म हुआ। तो ये मत देखा करें कि रिजल्ट कितना आया, ये देखा करें मैंने कोशिश कितनी की। सारी दुनिया भी कोशिश कर ले और अगर मैंने नहीं की तो मेरे मेरा कोई भी अजर नहीं, और सारी दुनिया ना कोशिश करे और सारी दुनिया ना माने, लेकिन मैंने कोशिश अगर लगा दी ना अपनी तो मेरे लिए अजर है, ये याद रखिएगा। फिर देखें ये बात, इन्नहुम इलैहिम ला यरजिउन, फिर वो कभी उनकी तरफ पलट के नहीं आए। बड़ा इसमें सबक है इस जुमले में कि तबाह हो बर्बाद होने वाले फिर पलट के नहीं आते, एक बार जो दुनिया से चला गया वापस नहीं आएगा। सोचने की बात है ना कि मोहलत एक ही दफा मिलती है, अमल की मुद्दत और टाइम एक ही दफा मिलता है जो ये हमें मिला हुआ है, चाहे वो फर्द हो चाहे वो कौम हो, एक मौका है हमारे पास अपना फ्यूचर बनाने का या बिगाड़ने का। एक दफा यहां से जाने के बाद पलटना और वापस आना, इसका कोई मौका नहीं है। और अमल की मोहलत की जो सरहद है वो क्या है? मौत। मौत के बाद जजा और बदले की जिंदगी शुरू हो जाती है, जो कब्र है ना वो जजा और बदले की जिंदगी शुरू हो गई, और उसके बाद अमल कोई नहीं है। और वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहां पे देख लें सूरह यासीन में दो ही अकीदे जिनको जहनों में बिठाने के लिए बार बार ये बातें की जा रही हैं। एक, मरने के बाद हर इंसान को अपने अमल का हिसाब देना, या कैदा आखरत है, और दूसरा अल्लाह के हजूर सबको हाजिर किया जाएगा और उसने अकेले ने हिसाब लेना है, ये अकीदा तौहीद है। ये दो बुनियादी अकायद देखें बार बार आएंगे, और इन्हीं को जहन में बिठाने के लिए आज के लेसन के अंदर अल्लाह ताला ने पे दर पे कायनात की मुख्तलिफ चीजों से दलाइल दिए और मुतवज्जे कराया कि देखो नादानों, जिन चीजों को तुम दिन रात देख रहे हो, बरत रहे हो, रोज बरतते हो, फायदा उठा रहे हो, कभी इन पे गौर भी कर लिया करो। हर चीज वही बात बता रही है, वही पैगाम दे रही है जो अल्लाह के रसूल तुम्हारे पास लेकर आए। तो देखते हैं कि क्या चीज है जो हमें बताई जा रही है। वह आयतुल्लाहुम, और एक निशानी है उनके लिए। निशानी क्या चीज होती है, आयत क्या चीज होती है? निशानी असल में उस चीज को कहते हैं जो किसी की याद दिला दे। हम कहते हैं ना, किसी ने हमें कोई मसलन कोई चीज दी, या हमारे किसी प्यारे की कोई चीज है हमारे पास पड़ी हुई थी, एक दिन हमने अपनी अलमारी साफ की तो वो चीज निकल आई, तो चाहे वो प्यारा दुनिया से चला भी क्या होता है, हमें वो याद आ जाता है। ये शर्ट उसकी थी, ये उसने मुझे दी थी, ये फलां चीज उसकी थी, ये जेवर उसका था, उन्होंने मुझे पहनाया था उस वक्त, तो याद आ जाता है ना, उसको कहते निशानी। और हम बड़े निशानियों को संभाल संभाल के भी रखते हैं, ये फलां की निशानी है, ये फलां की निशानी है। इस कायनात में हर तरफ अल्लाह की निशानियां जो बिखरी पड़ी, जो किसकी याद दिलाती हैं, अल्लाह ताला की। अगर इंसान सोचे तो क्या निशानी है, आयतुन, सबसे पहले आयतुन है क्या है, नकीरा, और नकीरा जब कोई चीज होती है तो उसमें ताजीम का भी पहलू होता है, यानी इसमें क्या निशानी के ये जो जमीन है, अल अर्दु मैतातु, मुर्दा जमीन में भी निशानी कि अहयैनाहा, हमने जिंदा किया इसको, व अखरजना मिनहा, और हमने निकाला इससे हब्बन गल्ला, और कौन सा गल्ला, खास तौर पे ग्रेन्स के लिए आता है, फमिन हो कुलून, इसमें से वो खाते हैं, ऐसा गल्ला जिसमें से वो खाते हैं, यानी जमीन को देखो, ये भी तुम्हारे लिए साइन है। साइन असल में तो उस शख्स के लिए हो सकता है जो कि गौर व फिक्र करे, जो देखे, जो सोचे। इसमें साइन क्या है कि एक रब है जिसने इस जमीन को जिंदा किया। देखिए आप देखते हैं ना, विंटर में सर्दियों में कैसे हर चीज ऐसे लगता है मुर्दा हो गई, दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, घास पीली होने लगती है, कैसे हर तरफ एक मुर्दगी की सी पता चलती है कि जैसे मुर्दा है, जमीन मुर्दा हो गई। और उसके बाद बहार आती है, अल्लाह ताला जमीन को जिंदा कर देता, वही दरख्त जो ऐसे लगता है सूख के खत्म हो चुके, उनके ऊपर ही पत्ते आने लगते हैं, हरे भरे पत्ते। इसी तरह किसी जगह बारिश नहीं होती बहुत अरसे, तो खुश्क कैसे मट्टी होती, फिर बारिश होने लगती है तो कैसे वही जगह हरी भरी हो जाती है। ये जिंदगी है हरा भरा होना, ये मौसम भी हमें देखे इसी चीज की याद दिलाते हैं। विंटर क्या याद दिलाता है कि एक दिन मुर्दगी है, बहार आई जिंदगी। इंसान भी एक वक्त ऐसा था बिल्कुल नहीं था, फिर वो दुनिया में आता है, बहार आ गई, फिर समर आता है। समर में क्या होता है, जैसे समझ लें एक जौबन जवानी का, उसके बाद फॉल आ जाता है, खिजां इंसान पे बुढ़ापा, उसके बाद फिर से जैसे कभी नहीं था उसी तरह खत्म होके बिल्कुल मट्टी हो जाता है। विंटर आ जाता है, फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। साल में ये मौसम आते, ये भी हमें इस चीज की याद दिलाते, देखो तुम्हारी जिंदगी को ऐसे ही ढल जाना। ये मुर्दा जमीन भी याद दिलाती है कि देखो जैसे मुर्दा थी फिर जिंदा हुई फिर मुर्दा हो जाती है, इंसान भी ऐसे ही मुर्दा होगा, अल्लाह ताला उसको जिंदा कर सकता है जैसे इस जमीन को जिंदा करता है। और फिर देखो इसी जमीन से हम लेसन ले सकते हैं, हम इसको देखते तो हैं हरा भरा होते हुए, लेकिन क्या उसके बाद अकल इस चीज को पहचानती है कि देखो फिर उस रब ने कैसे इसको हरा भरा कर दिया, और इसमें से कैसे गंदम उगाई, कैसे अनाज बाकी उगाए, कितनी तरह के अनाज हमारे लिए उगते हैं, कहीं गंदम है कहीं मकई है कहीं जौ है, हब है ना ये सब, इनका छिलका जानवर खाते हैं, अनाज इंसान खाते हैं, जिंदगी का दारो मदार इस पे है। हम रोटी खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, आज सुबह से कितने लोगों ने ब्रेड खाई होगी, कितनी दफा खाते हैं, कर कितनी दफा सोचते हैं कि ये ग्रेन्स जो हैं, हब जो है, ये मेरे रब ने मेरे लिए बनाया, इसमें से तुम खाते हो, फरमाया अखरजना हमने निकाला, हम कहते हैं हमने ही पैदा किया, क्योंकि बीज हम जमीन में डाल देते हैं तो हम सोचते हैं मैंने पैदा किया, उस बीज को फाड़ता कौन है, उसको जमीन से निकालता कौन है। एक वक्त आएगा जमीन कुछ उगाना बंद कर देगी, कयामत के करीब खुशखसाली हो जाएगी, तब भी तो लोग जमीन में बीज डालेंगे ना, कहाँ जाएगा, जब बीज आप डाल देते हैं आपकी ताकत नहीं है कि ये उगे या ना उगे, ये उस रब की ताकत है जो उगाता भी है, फिर उसमें बालियां भी आती हैं उसमें ग्रेन्स आते हैं, सिट्टे खड़े होते हैं, इसमें हमारी कुछ भी ताकत नहीं। इस मट्टी को खा लो कैसी बदजायका, इसी मट्टी से उगने वाला जौ गंदम मकई कितनी लजीज, हमारी रोज की खुराक है, मगर क्या रोज उस रब को याद करते जिसने फरमाया वो अखरजना हमने निकाला, हमें क्यों बताया जा रहा है, ताकि हम उस इससे रब को पहचाने, जो खिलाता है ना इंसान उसके आगे झुकता है। आप जानवर को भी देखें, जो जानवर को रोटी डालता है जानवर उसके आगे दुम हिलाता है, उसका वफादार होता है, उसको नहीं भूलता। एक उन्होंने दिखाया, हैरान भी मैं हुई कि देखे सुभान अल्लाह, एक आदमी बीमार हो गया, शायद कोविड के ही दिन थे, उस वक्त वो वीडियो आई, ये न्यूज़ के अंदर ये बात आई थी, वो अस्पताल में उसको ले जाया गया, तो उसका कुत्ता जो था वो रोजाना सुबह अस्पताल के दरवाजे के आगे जाके बैठ जाता था, शाम को फिर घर आ जाता था, फिर सुबह को जाता था, फिर वहीं बैठ जाता, जब तक वो बंदा अस्पताल में रहा, रोजाना का मामूल उस कुत्ते का यही था। ये कोई कुत्ते जैसा जानवर भी उसको पहचानता है जो उसको रोटी खिलाता है, जो उसके आगे रोटी डालता है। अल्लाह ताला ने तो हमें रोटी भी खिलाई, और क्या क्या नहीं हमारे नाज उठाए, फिर भी इंसान इतना बेवफा कि अपने रब को भूल जाए, वो इतना मगन दुनिया के अंदर कि उसी रोटी खिलाने वाले को याद नहीं रखता, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी, नमक हरामी है ये। जानवर से ही वफादारी सीख ले कि वो कितना वफादार है। तो खाना इंसान की रोज की जरूरत है, रोजाना हम खाते हैं, और एक दफा नहीं दो तीन दफा खाते हैं, फिर भी कभी खाते हुए नहीं याद आया, कभी निवाला मुंह में डालते भी नहीं एहसास हुआ कि कौन है जो मुझे खिला रहा है। नहीं जी, हम खुद लेकर आए, हमने खुद मेहनत की, हम खुद कमाते हैं, हम लाते हैं, यही तो कारहून ने कहा था, यही तो उसकी बात थी कि मेरी मेहनत है। तो इंसान की मेहनत से कुछ नहीं होता, आपके पास पैसों का ढेर भी हो, अल्लाह ताला जमीन से अनाज ना उगाए तो इन पैसों को आप इस पेपर मनी को ले लेके फिरते रहे और कहे मैं सारे अपने खजाने दे दूं, मुझे कोई एक रोटी दे दे, नहीं मिल सकती अगर वो रब ना अनाज उगाए। तो अल्लाह ताला ने उस चीज को यहां पे बयान किया जो हमारी स्टेपल डाइट है, रोज ना जो इस्तेमाल करते हैं आप, उससे देखें ब्रेड भी बनती है, बंस भी बनते हैं, रोटी भी बनती है, पराठे भी बनते हैं, पूरी भी बनती है, क्या क्या चीजें खाते हैं आप, कॉर्न से भी क्या क्या चीजें बनती हैं, जौ से क्या क्या कुछ बनता है। वह जाल नाफी है जन्नात, और हमने बनाए इसमें बागात, किसके लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि आगे मिन नखीले व आनाब, खजूरों के भी और अंगूरों के भी, इन्हीं दो चीजों का जिक्र क्यों आया। बागात तो और भी बहुत किस्म की है, खास तौर पे खजूर और अंगूर का जिक्र क्यों है, सोचना चाहिए, हर चीज को सोचा करें ना, क्यों इन दोनों का जिक्र है, इसलिए क्योंकि ये फुल एक मील है। आप अगर खजूर खा लेना तो वो इतनी काफी है कि आपको प्रोटीन भी देती है, कार्ब भी इसमें है, फाइबर भी इसमें, इस तरह अंगूर भी। आपको अगर इसके साथ कुछ भी नहीं खाते ना तो ये एक इटसेल्फ एक पूरा खाना है, एनर्जी का बड़ा सोर्स है, पेट भरने के लिए काफी है। इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली औरतों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और खास तौर पे जो औरत डिलीवरी के लिए जा रही है वो खजूर खा ले, उसके लिए आसानी होगी। हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही तो फरमाया, खजूर खाएं, ये तना हिलाएं और खजूर खाएं, इसकी नबीज बना के भी पी जाती थी, यानी रात को भिगो दी खजूरें और सुबह को उनको मसल लिया उसी पानी के अंदर और उस पानी को पी लिया, ये नबीज, ये ठंडी होती है। खजूर एक ऐसी चीज है कि जिसका उसके दरख्त की कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो इंसान इस्तेमाल ना करे, हर चीज उसकी इस्तेमाल होती है, तने से लेके उसके पत्तों से लेके उसकी टहनियों से लेके उसके फ्रूट से लेके, और फ्रूट भी आपको प्रिजर्व नहीं करना पड़ता, वो खुद ही इतनी अरसे तक कायम रहते हैं, उसके फल से ही फिर आगे छुहारे भी बनते हैं, सूख भी जाता है तो इस्तेमाल होता है, उसकी गुठली भी इस्तेमाल होती है, उसको भी पीस के उसका भी पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अंगूर भी है, उसी से किशमिश बनती है, मुनक्का बनता है, कितनी चीजों में इस्तेमाल होता है, और भी एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अरब लोग तो पानी और खजूर के ऊपर सारा दिन भी गुजार लेते थे। हम जब सहाबा की जिंदगियां पढ़ते हैं, अजवाजे मुतहरात का देखते हैं, तो वो कहते थे कितने कितने अरसा गुजर जाता था ये खजूर और पानी बस। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें पैदा की, लेकिन देखे इन चीजों के फवायद बहुत हैं, तो उनको खास तौर पे मेंशन किया गया। तो सिर्फ एक गंदम दे के या एक जौ दे के इसके ऊपर ही नहीं, और भी कितने सारे बागात हैं सब इंसान के लिए पैदा की। नाज तो देखो तुम्हारे तुम्हारे रब ने कितने उठाए, बड़े लाडले हो तुम, हाँ, जिसके लिए इतना कुछ पैदा कर लिया। और वफज्जरना फीहा मिनल उयून, और फाड़े हमने इसमें चश्मों से, मुख्तलिफ चश्मे फाड़े, इसी जमीन से, इसी जमीन की बात चल रही है कि इसी में बागात उगाए, इसी के अंदर हब ग्रेन्स हैं, इसी के अंदर चश्मे इसमें से निकाले, कैसे अल्लाह ताला इसको जिंदा करता है, इसी तरह अल्लाह ताला तुम लोगों को भी जिंदा कर देगा, मुर्दा हो गए जिंदा, इसी जमीन से ये सब चीजें निकलती हैं ना, इसी जमीन से अल्लाह ताला तुम्हें खड़ा कर देगा, ये बास बादल मौत के ऊपर एक बड़ी दलील है, और अल्लाह ताला की नेमतों का भी जिक्र है। अब यहां पे मिनल उयून, मिन बयानिया हो सकता है यानी तमाम चश्मे, और मिन तबईजिया भी हो सकता है कि बाज चश्मे, बाज चश्मे ऐसे, बाज चश्मे ऐसे, कुछ मुख्तलिफ किस्म के चश्मे, कुछ बह रहे होते हैं, कुछ ठह रहे होते हैं, कुछ तालाब की तरह होते हैं, पहाड़ों की चोटियों से आ रहे होते हैं, आप ऐसे ऐसे चश्मे भी देखे हैं, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, कि इतना सख्त पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर से पानी निकल के आ रहा है, लोग देखने के लिए जाते हैं, वो देख के फिर कहते हैं वाह अमेजिंग, लेकिन ये नहीं सोचते सुभान अल्लाह अल्लाह हू अकबर, या अल्लाह तू कैसे निकालने वाला, ये कहां से पानी आ रहा है, और मीठा पानी, क्लीन, कैसे, ये कैसे हो गया, लोग पानी भर भर के लाते हैं वहां से। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंसान गौर नहीं करता उसके ऊपर। सैर पे तो चले गए, देखा तो सही, लेकिन उन निशानियों से अल्लाह तलक तक नहीं पहुंचे तो क्या पाया फिर। ये तो सब निशानियां हैं, इन सब चीजों से अल्लाह तला हमें याद आना चाहिए, क्यों नहीं याद आता। अच्छा सुभान अल्लाह भी कह देंगे, लेकिन चलो अब सीख लिया कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए, चलो सुभान अल्लाह कह दिया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह के साथ अल्लाह तला की अजमत, उसकी हैबत, उसकी कुदरत, उसकी रहमत से दिल भर जाना चाहिए इन जज्बात से। उसके बाद जब नमाज पढ़ें तो नमाज में मिठास आ जाए, उसके बाद जब जिक्र करें तो उसमें मोहब्बत आ जाए। या अल्लाह तू ऐसा है, तूने हमारे लिए ये सब कुछ पैदा किया, तब बात बनती है ना। और बस सुभान अल्लाह कह के चलो जी आगे, आगे क्या चीज़ है, सुभान अल्लाह भी हमारा बस एक वो ही बन गया कि चलो ये कहना है, ये सीख लिया, बस आगे कुछ पता नहीं है कि क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं कि इस तक अल्लाह तलक तक पहुंचना है, गौर व फिक्र का सामान है इसमें। ये सब क्यों बनाया अल्लाह ताला ने, क्यों ये अनाज और ये खजूरें और ये चश्मे बह रहे हैं, और क्या क्या रंगीनियां हैं, बागात हैं तो कैसे हैं, झरने हैं तो कैसे हैं, क्यों ये सब कुछ। या आप इसके ऊपर शायरी करें, या आप इसको देख के बड़े मेस्मराइज हो जाएं, या इसके लिए कि जानवर इनको खाएं, लिया कुलू मिन समरही, ताकि वो खाएं इसकी पैदावार में, ये इंसान के लिए बनाया गया कि इंसान इसकी पैदावार से खाए, इन सब चीजों खाए, यानी इंसानों के लिए खाने के लिए, तुम्हारे लिए। और फरमाया अल्लाह ताला ने ये वमा आमिलत हु अईदीहिम, हालांकि इनके हाथों ने नहीं इस काम को किया, इनके हाथों ने नहीं उगाया ये सब कुछ, इनके हाथों ने नहीं ये चश्मे बहाए, इनके हाथों ने नहीं जमीन को जिंदा किया क्या। और माँ का मतलब अगर नाफी नाफिया ले माँ को, तो फिर जो मैंने आपको मतलब बनाया बताया ये हो सकता है। और माँ मौसूला, फिर तो पीछे के साथ ही अटैच, इसलिए ताकि लियाकुलू मिन समरिही व माँ आमिलत हु अईदीहिम, ताकि वो खाएं इसका समर, इसका जो फल है, इसकी जो पैदावार है वो भी खाएं, और जो इनके हाथों ने, फिर जो का माना होगा, और जो इनके हाथों ने बनाया, यानी अल्लाह ताला ने ये पैदा कर दिया, फिर आगे इंसान इन्हीं से चीजें बनाता है। आप गंदम से रोटी बनाते हैं, आप कॉर्न से कितना कुछ बनाते हैं, कॉर्न सिरप बनता है, क्या क्या चीजें और बनती हैं, फिर आप इन फ्रूट्स के साथ डिजर्ट्स बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, जेली बनाते हैं, चटनियां और तरह की, मुरब्बे, शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बनती हैं। अफला यशकुरून, एक ही तुमसे मुतालबा है सबके बाद, खाओ पियो, इनको एंजॉय करो, इससे मना नहीं किया अल्लाह ताला ने कि हम कहें नहीं नहीं हम तो इतने नेक है ना, हम तो खाते ही नहीं है, सूखी रोटियां हम खाते हैं बस, और नेकी हमारे अंदर इसलिए कि बहुत ज्यादा तकवा बहुत है ना, ये नहीं है तकवा। अल्लाह ताला ने ये चीजें बनाई, तुम खाओ, तुम्हारे खाने के लिए बनाई है, इंजॉय करो, इसका मजा लो, लेकिन शुक्र तो अदा कर लिया करो। अफला यशकुरून, शुक्र नहीं करते तुम, शुक्र करना नहीं याद रहता तुम्हें, दिन में कितनी दफा चलते फिरते हम मुंह में कितनी चीजें डालते हैं, कोई नमकीन, कोई मीठी, कोई खट्टी, लेकिन शुक्र कितनी दफा अदा होता है। कितनी चीजें हैं जो हमारे किचन में हमें बार बार याद दिलाती हैं अल्लाह ताला की, उसकी साइंस में से हैं। सालन बनाते हैं, प्याज तो काटते होंगे, उसके पर्थ देख के अल्लाह नहीं याद आता। आग जलाते हैं, अल्लाह ताला सूरह वाकया में कहते हैं ना, तुम ये करते हो या हम करते हैं, ये आग भी आज जो आपके चूल्हे में जलती है, तो कहीं पे भी नहीं अल्लाह याद आया। वो तो बड़ा ना शुक्र है जिसको वो रब खिलाए पिलाए पहनाए और तरह तरह के खाने खिलाए हमारी मेज के ऊपर, हमारे दस्तरखान के ऊपर कितनी तरह के खाने चुने होते, उनमें से कोई भी नहीं अल्लाह की याद दिलाता। बैठते हैं, बातें की, इधर साथ टेक्स्ट चल रहा है, इधर साथ बात हो रही है, या नजर फोन के ऊपर है और मुंह में डालते जाते हैं और फिर उठे और चल दिए। ना ये पता है कि खाया क्या, कब शुरू किया और कब खत्म किया, कहीं भी अल्लाह याद नहीं आया। खाते जाते हैं, साथ टेक्स करते जाते हैं, साथ गेम चल रही है, साथ बातें चल रही हैं। दुनिया जहान की बात है, अल्लाह ताला की बात नहीं है। ये नाशुक्री तो है, खा पी के उसको याद ना किया जिसने दिया है। अल्लाह अकबर, कुछ लोग तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बिल्कुल गफलत में है, बिल्कुल ही उनको पता ही नहीं कोई हमें देने वाला भी है, वो तो बिल्कुल ही कुफर है। कुछ कहते हैं अच्छा याद तो किया लेकिन कम याद किया, कभी कर लिया कभी नहीं किया, ज्यादा वक्त नहीं याद किया, कभी कभी अल्लाह याद आ जाता है। तो ये भी नाशुक्री है। एक मोमिन जो होता है वो कैसे अल्लाह ताला से कभी गाफिल हो सकता है, जब फ्रिज खोलें और खाने से भरा हुआ है तो कैसे अल्लाह ना याद आए, या खाने बैठे और तरह तरह के खाने सामने, कैसे नहीं अल्लाह याद आता। लेकिन हम इन सब चीजों को रूटीन समझते हैं ना, कि जब भी हम फ्रिज खोलेंगे भरा ही पड़ा होगा, जब भी हम बैठेंगे हमारे पास तरह तरह के खाने होने ही चाहिए, कभी एहसास नहीं होता मुंह में क्या डाल रही हूं। आज तक कितने खाने खाए आप सोचें, अपनी एज सोचें और देखेंगे कितने दिन आपकी एज में गुजरे हैं। आज तक हर दिन खाना खाया है, चाहे रोजा भी रखा हो तब भी इफ्तारी में तो उससे भी ज्यादा खा लिया, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि खाना ही ना खाया। लेकिन ये बताइए इन सारे दिनों में कितने वो दिन हैं जिनमें अल्लाह को याद किया, जिनमें अल्लाह की नाफरमानी ना की हो कि वो मुझे खिलाता है मैं उसी की नाफरमानी करूं। कुत्ता भी जो है ना कभी अपने मालिक को नहीं काटता, कभी नहीं काटता, हमेशा आप देखेंगे उसके आगे पीछे दुम ही हिलाता फिरेगा। मालिक मार भी देगा ना तो वो सर नहीं उठाता, वहीं पे रोता रहता है लेकिन सर नहीं उठाता। इंसान कैसा है, वो ही उसी का दिया खाता है और उसी की नाफरमानी करता है। तो शुक्र गुजारी के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला को याद रखा जाए, कभी भूल जाए तो फिर याद आ जाए, फिर याद करने लगे। कभी इंसान, हो सकता है कि इंसान को भूल जाए, इंसान के साथ भूल लगी भी है, लेकिन जो ही ख्याल आए उसी वक्त शुक्र गुजारी। तो ये भी शुक्र के दर्जे हैं ना, कोई कम करेगा शुक्र, कोई ज्यादा करेगा, कोई हर वक्त करेगा। तो जितनी ज्यादा नेमतें हैं हमारे पास हमें शुक्र ज्यादा करना चाहिए कि कम, तो फिर क्यों नहीं करते। वाफला यशकुरून में एक गिला है अल्लाह ताला का, पहले भी आया था ना, कलील उम्मिन इबादी यशकुर, मेरे बंदों में से बहुत कम ही है जो शुक्र अदा करते, ये गिला है। तो आज का दिन ही देख लें, अभी तक मैंने कितना शुक्र अदा किया। सुबह उठी हूं तो क्या मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, बाथरूम गई तो उसके बाद निकल के कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबानी अलाज़ा, नाश्ता किया तो उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा ताम, कितनी दफा अभी तक शुक्र कर चुके हैं। तो इसी से देख लें रोज कितना शुक्र होता है। एक चीज का मुतालबा है सिर्फ शुक्र का, और शुक्र ये है कि इंसान दिल से भी शुक्र अदा करे, जुबान से भी शुक्र अदा करे, उसके आज़ा भी देने वाले की फरमाबरदारी करें, उसकी इताअत करें, उसकी नाफरमानी ना करें। इधर दिन स्टार्ट हुआ, उसने अल्लाह ताला ने जिंदगी दी यानी मौत थी, मर गए थे एक तरह से, आधी मौत है सोना, नींद आधी मौत है ना, उसके बाद उसने जिंदा किया ना, जिंदगी देता तो उस नींद में ही मर जाते हम, तो क्या कर लेते, कोई हक तो नहीं था हमारा कि हम जिंदा जरूरी होते, उसने उठा दिया तो देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन असल में ना हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमसे जब तक नेमत छिनती नहीं है ना, हमें एहसास ही नहीं होता, हम शुक्र सच्चा अदा करते ही नहीं, बस शुक्र भी ऐसे ही, हाँ ठीक है दुआएं याद कर ली तो ठीक है, वो भी वैसे ही पढ़ ली बेदिली के साथ, उसके अंदर एहसान मंदी के जज्बात नहीं है। जिस दिन एहसान मंदी होने लगी ना, उस दिन शर्म आएगी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते, एहसान मंदी नहीं है अंदर। और कह भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, सुबहान अल्लज़ी खलकल अज़वाज, सुबहान पाक है वो जात पाक है, किस चीज से, हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की नाकिस चीज से, हर किस्म की कमजोरी से, नक्स से पाक जात, और हर उस चीज से वो पाक है जो उसकी शान के लायक नहीं है, उससे पाक। क्योंकि बास चीजें हमारे लिए हो सकता है वो ऐब की ना हो, जैसे औलाद है वो हमारे लिए तो ऐब की चीज नहीं है, बल्कि बड़े खुशकिस्मती की हमारे लिए चीज है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए औलाद ठहराना ऐब है। तो जो चीज उसके लायक नहीं है, उसकी शान के मुताबिक नहीं, उससे उसको पाक करार देना, ये है सुबहान। वो पाक है वो जात, अल्लज़ी खलकल अज़वाज कुल्लाह, जिसने पैदा किया सब जोड़ों को सारे के सारे, उसमें से मिम्मा तुम्बितुल अर्द, उसमें से जो जमीन उगाती है उसमें जोड़े जोड़े। अब देखें 1400 साल पहले लोगों को क्या पता था कि इन नबातात में भी जोड़े होते हैं, प्लांट्स में भी नर और मादा की अकसाम है, एक नर है दरख्त, एक मादा है, पौधों के अंदर भी है, पोलिनेशन होती है। फिर अजवाज जो है ना, आपस में मुमासलत रखने वाली चीज को भी कहते हैं और ऑपोजिट्स को भी कहते हैं, जैसे धूप छाऊं, दिन रात, नर मादा, और आपस में मुमासलत, जैसे एक जूता दूसरे दूसरे का जौज है, ठीक है, वह मिन अनफुसिहिम, और इनकी जानों में भी अजवाज पैदा की, एक मर्द है तो एक औरत है, और वह मिम्मा ला यालमून, और उसमें भी जोड़े हैं जिनका तुम्हें अभी पता ही नहीं। अब उस जमाने में तो ये भी नहीं उनको पता था कि नबातात में जोड़े हैं, और भी किस किस चीजों के जोड़े हैं, इंसान का इल्म बहुत कलील है। सारे इंसान मिल के भी आज साइंस इतनी तरक्की करके भी, तब भी हर मखलूक का नहीं जानते। जोड़े हर चीज में, साइंस ये अब बताती है, अल्लाह ताला ने उस वक्त बता दिया, सूरज चांद जोड़ा, गम और खुशी जोड़ा, देखे ना, अब इन चीजों के अंदर भी जोड़े हैं ना, उम्मीद और नाउम्मीदी एक जोड़ा, तो लेकिन अल्लाह की जात वो है जो इससे पाक है, वो जोड़े में नहीं है, इसीलिए शुरू में ही सुबहान आ गया, वो पाक है इससे, लेकिन उसने सब बाकी चीजों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, वो खुद वितर है, और वितर को उसने पसंद किया, ऑड, ठीक है, उसने ऑड को पसंद किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जो जानते ही नहीं, और जगहों पे है, वल्लाहु यालमु वा अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, इंसान की गर्दान क्या रहती, आई नो मुझे पता है, मुझे पता है, सारा वक्त यही है, मगर तुम्हें कुछ कुछ भी नहीं पता। कुरान कहता है तुम्हें नहीं पता कि पता नहीं कितनी और जहान है इसी जमीन के ऊपर, कितनी और मखलूकात हैं जिनका इंसान को आज तक नहीं पता। सुबहान अल्लाह, समंदरों के नीचे, गारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, अल्लाहु अकबर, एक गार ऐसा उन्होंने दिखाया, मैं हैरान हो गई, उन्होंने कहा उसके अंदर पानी था, वो इतना डीप था, इतना डीप था, पता नहीं कितने माइल्स तक वो था, उसके अंदर पानी था, उसके अंदर और मखलूक थी, ऐसी सी मछलियां थी, वो भी अजीबो गरीब ही थी, क्योंकि वो इतना अंधेरा था अंदर कि वहां की मखलूक को भी कुछ, जाहिर है पता नहीं अजीब अजीब ही चीजें थी उसके अंदर, तो कई चीजें इंसान को पता ही नहीं, इसी जमीन पे थी आज जाके पता चल रही, कई हैं जो अभी तक भी नहीं पता है। अभी तो हम अपनी इस स्पेस से बाहर भी नहीं निकले, तो इसी जमीन पे इतना कुछ है, रोज कहते हैं जी ये चीज डिस्कवर हो गई, इस चीज का इंकशाफ हो गया, कितनी रिसर्च होती है, फिर कितनी चीजों का पता चलता है, कितने वायरसेस का, बैक्टीरिया का, इन चीजों का हमें नहीं पता। तो वह आया तो लहुमुल्लैल। अच्छा ये भी देखे ना, अब एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो भी ऑपोजिट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम पहले को उसको कहाँ, पहले के लोगों को नहीं पता था। वह आया तो हुमुल्लैल, और एक निशानी उनके लिए रात में भी है, ये भी एक अजीम निशानी है। देखिए मैंने बताया ना, इसमें भी तजीम का पहलू है कि बड़ी एक अजीम निशानी है अल्लाह ताला की रात। अब रात भी कितनी रातें आती हैं जाती हैं, कुछ पता ही नहीं हमें, रात आ गई बस ठीक है आ गई, लेकिन ये भी अल्लाह की निशानी है। हाँ ये भी है, गौर करने वालों के लिए ये भी एक बड़ी निशानी है कि नस्लखु मिन्हु नहार फइज़ा हुम मुस्लिमून, कि अल्लाह ताला निकालता है, खींच लेता है इससे दिन को, तब वो अंधेरे में रह जाते। आप देखें इसका मतलब है कि ओरिजिनली यहां पे अंधेरा है इस कायनात में, इसीलिए आप स्पेस में चले जाएं वहां पे कोई दिन तो नहीं चढ़ा होता, अंधेरा ही अंधेरा है। उसमें अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर दिन को लेकर आता है, और फिर जैसे खाल खींच लिया जाती है, इस तरह दिन को खींच लिया जाता है और फिर लोग अंधेरे में ही रह जाते हैं। नहीं, इसका मतलब दिन की एक चादर आती है और फिर दिन को खींच लिया जाता है, ओरिजिनली दिन नहीं है, ओरिजिनली अंधेरा ही है। हम तो इतनी रोशनियों के अंदर रहते हैं कि हमने रातों को भी दिन बना लिया ना, तो अब हमें पता ही नहीं होता कि अंधेरा भी कोई चीज है। लेकिन अगर लाइट चली जाती है, बिजली नहीं हो, फिर एहसास होता है कि आए अंधेरा, घुप होना क्या चीज है, घुप अंधेरा, हर तरफ अंधेरा, फिर क्या होता है, हम सारे बैठ जाते हैं, अपनी जगह से भी नहीं उठते, कहीं टकरा जाएंगे। देखें ये दिन लाना, रोशनी करना, ये अल्लाह ताला का काम है। इतने बड़े आसमान के ऊपर एक ये दिन का निजाम और रात का निजाम, आना और जाना, एक कितनी बड़ी कुदरत है उस रब की। हम कितनी भी लाइटें जला लें, दिन नहीं कर सकते। और फिर दिन के अंदर जो चहल पहल और हर चीज एक्टिव हो जाती, रात तक हर चीज आराम के मूड में चली जाती, अल्लाह ताला की बड़ी निशानी। फिर वश्शम्सु तजरी, फिर सूरज भी निशानी, तजरी भाग रहा है, ली मुस्तकर्रिन लहा, एक ठिकाने के लिए, एक ठिकाना है जिसकी तरफ सूरज भाग रहा है। यानी अगर हम इसको इस तरह से लें कि अल्लाह ताला ने इस सूरज की एक जगह मुकर्रर की हुई है, उस जगह के लिए ये भागने लगा हुआ है, उस जगह के लिए पीछे जा रहा है, यानी तेजी से जा रहा है, चलता जा रहा है अपनी मुकर्रर शुदा मंजिल के लिए। अब इसकी तफसीरें बहुत सारी मुफस्सिरीन ने की हैं। मिसाल के तौर पे मुस्तकर से मुराद उन्होंने ज़र्फ़े ज़मान लिया, ज़माना यानी कयामत का वक्त, यानी कयामत आने तक सूरज मुसलसल चलता रहेगा। जब कयामत आएगी तो इज़ शम्सु कुव्विरत, तब सूरज भी लपेट लिया जाएगा, अब सूरज के खत्म हो जाएगा ना फिर बिल्कुल। और ये भी है कि किसी एक पार्ट में जमीन के रात आने तक सूरज चलता रहता है, जब रात आ जाती है तो वो वहां पे गुरूब हो जाता है, तो एक मुस्तकर तक गया ना वो, एक टाइम तक, रात रात का टाइम आया गुरूब होने यानी मगरिब के टाइम के ऊपर वो गुरूब हो जाता है। फिर जरफे जमान, इस जरफे जमान तो हो गया मकान, इसको ले मकान जगह, तो उस सूरत में सूरज दौड़ रहा है भाग रहा है, गर्मियों में इंतहाई बुलंदी पे होता है, सर्दियों में उसकी बनिस्पत पस्ती पे होता है, एक ही जगह पे थोड़ी होता है ना। आप देखना है सूरज गर्मियों में उसका वो किस तरफ से तुलू होता है और गुरूब किस तरफ होता है, और मगरिब और मशरिक तो सेम ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज होता है। तो गर्मियों के मौसम में मुस्तकर तक सफर करता रहता है, और सर्दियों के मौसम में एक और मुस्तकर तक सफर करता रहता है। मकान डिफरेंट है ना, थोड़ा थोड़ा एंगल डिफरेंट है ना। तो अलग अलग जगह होती है हर रोज, 6 महीने तक हर रोज दर्जा ब दर्जा नए एंगल से निकलता, नई जगह से, थोड़ा थोड़ा फासला। क्या ये बताता नहीं है उस रब के बारे में? फिर दूसरा ये कि सूरज अपने महवर में गर्दिश करता है, अपनी ऑर्बिट में चलता है, और इसका इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत है। और सूरज कहाँ जाता है, एक मंजिल तक चलता जा रहा है, वो मंजिल उसकी हर दिन की अलग मंजिल है कि वो गुरूब हो जाता है, और एक कयामत है जो उसकी मुस्तकिल तौर पे फिर तो खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज चलता रहता है यहां तक कि अपने मुस्तकर पर पहुंचकर अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर इसी हालत में उस वक्त तक रहता है यहां तक कि उससे कहा जाता है बुलंद हो, और जहां से आया है वहां लौट जा, बस वो लौट कर अपने निकलने की जगह से तुलू होता है, फिर चलता रहता है यहां तक कि अपने मुस्तकर पर पहुंचकर अर्श के नीचे फिर सजदा करता है, फिर इसी हालत में उस वक्त तक रहता है जब तक कि उससे इजाजत लेता रहता है ना, जब तक कि उससे नहीं कहा जाता कि बुलंद हो जाओ, और फिर जब फिर उससे इजाजत दी जाती है फिर वहीं से लौट जाता है, वहीं से जहां से तुलू हुआ था वहीं से निकल आता है। ये इसी तरह चलता रहेगा और लोग इसमें फर्क महसूस नहीं करेंगे। देखिए ना, सदियों से ऐसे चल रहा है, यहां तक कि एक दिन आएगा जब सूरज अर्श के नीचे सजदा करेगा और इजाजत चाहेगा निकलने की, तो उससे कहा जाएगा जिधर से आया उधर ही लौट जा, तो तब वो अपने मगरिब से तुलू होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें पता है वो कौन सा दिन होगा? ये वो दिन होगा जिस दिन किसी शख्स का ईमान कबूल नहीं होगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया, और जिसने इससे पहले कोई नेकी नहीं की तो उस अब उसकी नेकी करने का भी वक्त खत्म। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब सूरज अर्श के नीचे जाके सजदा करता है, वो भी एक उसका मुस्तकर है, एक उसकी मंजिल है, एक एवरी डे की मंजिल है, और एक कयामत में तो परमानेंट मंजिल आ गई ना उसकी, और मुकर्रर वक्त तक चलता रहेगा, उससे आगे नहीं जाता कि आज मगरिब कल 6 बजे हुई तो आज सूरज लेट हो गया, आज जरा थोड़ा स्लो निकला था ना, आज थोड़ा थका हुआ है तो जरा लेट ही वो गुरूब हो रहा है, आज 7 बजे गुरूब होना शुरू, ऐसे नहीं होता। इसी वजह से तो आराम से वो कैलेंडर बना लेते हैं ना कि मगरिब का टाइम ये है, फजर का टाइम ये है, क्योंकि उनको पता है कि हम तो अपनी घड़ियां देख देख के फिर चलते हैं ना, सूरज को कौन घड़ी दिखा रहा है कि टाइम हो गया निकलने का, टाइम हो गया गुरूब होने का, इस वक्त सूरज इस जगह होगा, क्योंकि सदियों से उसका ये ट्रैक देखा है ना, तो तभी कैलेंडर बनते हैं ना, इस टाइम पे सूरज यहां पे होगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि एवरी डे वो उस टाइम पे पिछले साल भी आज की तारीख में उसी जगह से और उसी वक्त में निकला था, आज भी उसी तारीख में उसी जगह और उसी वक्त पे निकला है, और 10 साल पहले उठा ले और 20 साल पहले उठा ले और 100 साल पहले उठा ले, तब भी आज की तारीख में उसी जगह और उसी वक्त पे निकला था। सुबहान अल्लाह, देखते नहीं इससे कैसे, उसको कैसे पता है? उसकी स्पीड स्लो क्यों नहीं होती? उसकी स्पीड कभी तेज क्यों नहीं हो जाती? वो कभी लेट क्यों नहीं हो जाता? हम तो जितना मर्जी कोशिश करते हैं कहीं लेट ही पहुंचते हैं, कभी टाइम पे नहीं पहुंचते, कभी ट्रैफिक हो गई, कभी ये हो गया, कभी पता नहीं चला, कभी देर से उठे, कितनी भी कोशिश कर ले कोई बंदा कह नहीं सकता मैं कभी लेट ही नहीं हुआ। तो ये कैसे है कि सदियां हो गई ये कभी नहीं लेट हुआ? हम घड़ियां रखते हुए, अलार्म रखते हुए, हमें 10 लोग बताने वाले भी हों, तब भी हम नहीं वक्त पे पहुंच सकते अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में भी। हम अगर वक्त की पाबंदी चाहें तो हमसे नहीं होता, कभी नमाज लेट, कभी जॉब पे लेट गए, कभी कहीं और पहुंचना था वहां पे अपॉइंटमेंट पे लेट पहुंचे। तो अगर 4 दिन 8 दिन 10 दिन हम टाइम पे कर भी लेते हैं तो उसके बाद फिर जरूर लेट हो जाते हैं। लेकिन इसको क्या बात है कि सदियां गुजर गई, बीमार नहीं कभी पड़ता ही, कभी तो सुस्त हो जा सकती है रफ्तार, थकता नहीं क्या? तो ये चीजें बताती ही नहीं है इंसान को कि इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई चलाने वाला भी है, इसको इस पोजीशन में रखने वाला है। वो कौन है? वो अजीज है और अलीम है, जालिका तकदीरुल अजीज अल अलीम। ये सारा जो हिसाब किताब है ना, अंदाजा है ना, ये उस गालिब इल्म वाले का है, जिसकी कुदरत भी है, पावर भी है। पावर है तो इतना बड़ा कुर्रा, पता है सूरज कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, और ये चल रहा है। साइंस भी बता रही है कि ये चलता है। पहले जमाने में तो लोग सोचते थे कि नहीं, शायद सूरज स्टेशनरी है, सिर्फ जमीन चल रही है। आज पता चला सूरज भी चल रहा है, जमीन भी चल रही है, सभी चल रहे हैं। आगे बात आ रही है, कितनी इसकी स्पीड है, 200 माइल्स पर सेकेंड, 200 माइल्स पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा है। और कितना बड़ा है कि जब वो दिखाते हैं, चलो हमारी, क्योंकि हमें इतनी नहीं समझ आती ना, तो वो आप तो वो पिक्चर्स के साथ दिखाते हैं, इतना बड़ा एक बॉल है, और उसके साथ छोटा सा, यानी ये उंगली की पोर के बराबर छोटी सी, एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई है, ये जमीन है उसके मुकाबले में, इसे कई कई गुना बड़ा है। हमारे लिए तो जमीन ही बहुत बड़ी चीज है। ये इतना बड़ा कुर्रा, इसको चलाना, इसको कंट्रोल करना, अजीज ही जात हो सकती है ना जो कंट्रोल करे। ये किसी किसी इंसान की, पूरे इंसान भी मिल जाए तो नहीं इसको चला सकते। ये ना चले, ये ना निकले तो कौन इसको निकाल सकता है? ये ना चले तो कौन इसको चला सकता है? आपकी सारी मशीनरियां कहाँ रहेंगी? और अलीम जात का पता देता है ये, कोई इल्म वाला ही होगा जिसको पता है कि किस वक्त इसको निकालना है, किस वक्त इसको गुरूब होना है, कैसा होना चाहिए ये निजाम, क्या इंसान की जरूरियात है, और कितना इसका डिस्टेंस होना चाहिए अर्थ से। करीब ज्यादा हो गया तो जल जाएंगे ये सारे, दूर ज्यादा हो जाए तो सब फ्रीज हो जाएंगे, इनके ये फूल पौधे उगेंगे ही नहीं। अगर ज्यादा देखे ना आप, ज्यादा ही गर्मी हो जाए तो पौधे फूल मर जाते हैं। अगर सूरज दूर होता ना तो फ्रीज हो जाता ये प्लेनेट, और यहाँ पे कोई लाइफ ना हो सकती। सूरज ना सिर्फ हमारी खाने पीने के लिए, बल्कि इवन हमारी साइकोलॉजिकली भी हमारी जरूरत है, क्योंकि देखिए आप, कई दिन अगर सूरज नहीं निकलता, खासतौर पे जिन मुल्कों में, वो कहते ना बहुत छोटी सी दिन और लंबी रात होती है, लोगों को डिप्रेशन रहता है। इवन अगर सर्दियों में कई दिन सूरज ना निकले, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ये बीमारियां साइकोलॉजिकल हो जाती हैं, या आप इसका एक्सपीरियंस करते होंगे। तो देखो कि कितनी अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी हैं हमारे लिए। वो चमकता है तो एक रोशनी ना सिर्फ, एक लाइफ महसूस होती है, जिंदगी। सूरज नहीं है तो नो लाइफ ऑन अर्थ। अल्लाह अकबर। तो ये जो चल रहा है ना, तो हमेशा चलता नहीं रहेगा, एक दिन होगा कि बस खत्म। जब ये मगरिब से निकल आया, एवरीथिंग इज गॉन, क्योंकि हदीस में आता है 6 बातों से पहले आमाल जल्दी कर लो, उनमें एक क्या है, सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले, धुएं से पहले, दज्जाल से पहले, दाबतुल अर्द से पहले, और इससे पहले कि तुम्हें कोई ऐसे हालात पेश आ जाए कि तुम अमल ही ना कर सको, इन इन सारी चीजों से पहले पहले नेक अमल कर लो। तो इंसान ये सोचता है अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, लेकिन पता नहीं है कि कब जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए। जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो बस खत्म। आप ये निशानियां देखते हैं सूरज को, तो कभी आपने देखा होगा, सनराइज के लिए देखने के लिए गए होंगे, सनसेट देखने के लिए कभी लोग जाते हैं, बहुत खूबसूरत नजारा होता है, कभी नहीं देखा तो जरूर देखें। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अल्लाह ताला से ताल्लुक में कुछ चेंज आता है? देखिए ये सारी निशानियां है ना, आयतुन 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 कहा जा रहा है। रोजाना अगर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए भी किसी एक निशानी के ऊपर गौर करें, तो ये इबादत है, वो टाइम वेस्ट नहीं है, इबादत है, यकीन करें इबादत है। इसके लिए आपको कोई एक बंद कमरे में अंधेरा करके बैठने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हैं ना, जाते जाते आप 5 मिनट के लिए भी किसी एक चीज पे ही गौर कर लें, किसी एक चीज पे, आप देखेंगे आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जुड़ेगा, आप देखेंगे आप करीब महसूस करेंगे अल्लाह ताला के, आप देखेंगे आपका ताल्लुक मजबूत होगा अल्लाह ताला से। रोजाना की ये एक रूटीन बना लें, मैंने किसी ना किसी चीज पे गौर जरूर करना है। इसके लिए बहुत सारा नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है, बस गौर और फिक्र करें, सोचें, जितना भी आपके पास नॉलेज है उसको, उसकी देखें कि किस तरह से ये चीज हमारे पास आई है, कौन है इसके पीछे। सिर्फ उसके जाहिर को ना देखें, उसके पीछे जो उसको देने वाला उसको देखें। लेकिन जब इंसान इस तरह की आदत डाल लेना तो फिर उसका दिल अल्लाह ताला की अजमत से भर जाएगा, फिर इस दिल के अंदर कोई और चीज बड़ी नहीं रहेगी, फिर अल्लाह बड़ा होगा, फिर और चीज कोई इतनी अहमियत नहीं रखेगी जितना अल्लाह अहमियत रखेगा। फिर इंसान अपने सोशल मीडिया को और हुसन को और करियर को और इन चीजों को, उनको नहीं इतनी अहमियत देगा जितनी अल्लाह ताला को देगा। तो ये एक गौर व फिक्र की दावत देने का यहाँ पे, यानी हमें तरगीब दी जा रही है, एक एक ये सफर है एक, कि आप गौर करो, गौर करो। और ये चीजों के लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए कि पैसे से खरीद के लाएंगे तो फिर गौर व फिक्र करेंगे ना, नहीं, ये आपके सामने है रोजाना। वल्कमरा कद्दरनाहु मनाजिला हत्ता आदा कल उर्जून अल्कदीम, और चांद को देखो अपनी मंजिलों को कैसे तय करता है, मुकर्रर की है हमने ये मंजिलें, आप देखें उसकी मंजिलें कितनी है, 28 मंजिलें हैं, रोजाना एक मंजिल तय करता है। आप देखते हैं ना मंथ कितनी दिन का होता है, 29 का या 30 का, तो 28 दिन तक तो ये ऐसे रहता है, पतला सा निकलता है। आप कभी, अभी तो नहीं, बाद में आप कभी गूगल करके देखें, इसकी फेजेस ऑफ मून डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब शुरू होता है तो उल्टे सी की तरह होता है, फिर उसके बाद फिर फुल होता है, फिर उसके बाद फिर जैसे सी की शेप होती है, लेटर सी, तो उसकी शेप में आ जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गुम हो जाता है। फिर 29 या 30 दिन के बाद दोबारा निकलता है, जब आखिरी मंजिल पे पहुंचता है तब भी बारीक और छोटा होता है, और जैसे खजूर की पुरानी टहनी सूखी भी टेढ़ी हो जाती है। और चांद की इस गर्दिश से क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसकी वजह से मिठास होती है फलों में, इसकी वजह से समुद्रों में मद्दोजजर होता है, इसकी वजह से इंसान तारीखों का वो करता है कैलकुलेशन, और हमारी तो लूनर कैलेंडर से चूंकि हमारी सारा इबादात रिलेटेड है, चाहे वो हज है, जिलहज के दिन है, या वो रमज़ान है, या वो ईदें हैं हमारी, या बेवा की इद्दत है, ये सब चीज़ें देखें ना चांद की तारीखों के लिहाज से, तो हमारे लिए इसके अंदर कितनी अल्लाह ताला ने रहनुमाई रख दी, या आसमान पे हमारा कैलेंडर लगा दिया। सूरज के जरिए हम दिन का टाइम डिटरमिन करते हैं कि ये सुबह है, ये दोपहर है, ये शाम है, और चांद के जरिए हम महीने की कैलकुलेशन करते हैं कि ये पहली का चांद तो पहली तारीख, दूसरी का चांद तीसरी का चांद, 15 तारीख हो गई, 14वीं का चांद है 14 तारीख हो गई, कितनी चीजें हमें पता चलती हैं। तो इसके ये मंजिलों में भी अल्लाह ताला की निशानी है, ये भी एक रफ्तार के साथ चल रहा है, अपनी मंजिलों को तय कर रहा है, और इंसान की जिंदगी भी इस फेजेस ऑफ मून की तरह ही है ना, देखिए वो पहले पतला सा था, फिर जरा मोटा होने शुरू हुआ, फिर फुल हो गया, फिर उसके बाद फिर घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हो, घटना शुरू हो, फिर खत्म हो गया। क्या जिंदगी इससे पता नहीं चलती, जिंदगी भी तो ऐसे ही है, सूरज भी क्या जिंदगी का दर्श नहीं देता, एक दिन चढ़ता हुआ सूरज होता है, फिर फुल जौबन पे आ जाता है बिल्कुल दोपहर, और उसके बाद उसने ढलना ही ढलना है, ऐसा नहीं कि फिर वहीं पे खड़ा रह जाए, ऐसा नहीं कि और ही चढ़ता जाए, फिर तो ढलना ही शुरू हो जाता है, जिंदगी की भी शाम होने लगती है। एक दफा उरूज आ गया ना तो उसके बाद जवाल ही है, फिर ताकतें और नहीं आएंगी। चाहे आपको बुरा लगे कि मुझे कोई आंटी क्यों कह रहा है, चाहे आपको बुरा लगे कि आए आए मुझे किसी ने कोई बड़ा क्यों समझ लिया, आपको जो चाहे आप अपनी एज कितनी भी छुपाते रहे, अब उसके बाद ढलान ही है। आप वो वहां तक पहुंचना चाहे ना चाहे, लेकिन जिंदगी का सूरज फिर गुरूब की तरफ होता है, शाम होने लगती है, और शाम के बाद फिर रात ही है। ठीक है, शाम के बाद सुबह नहीं होती, शाम के बाद रात हो जाती है, डूब जाता है ये सूरज जिंदगी का। फिर जब दोबारा जिंदगी होगी तो वो नई लाइफ होगी, वो फिर ये नहीं होगी। जैसे नया दिन होता है वो ये वाला दिन तो नहीं होता ना, ये रोजाना हमें सबक दे रहा है, हमें समझ ही नहीं आती। कायनात हमें लेसन्स देती है, कायनात हमारी टीचर है, लेकिन हम इससे लेसन लेते नहीं। सूरज भी आया चला गया, चांद भी आया चला गया, दिन भी आए रातें भी आए, जिसने नहीं समझना वो किसी से भी नहीं समझता। लशमसु यंबगी लहा अंतु द्रिकल कमर, सूरज के लिए ये जेब नहीं देता कि वो जाके इस चांद को पकड़ ले, हालांकि सूरज में कितनी पावर है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है चांद की निस्बत। तो चांद जाके सूरज में गिर जाए, या सूरज चांद के मदार में आके दाखिल हो जाए, उससे टकरा जाए, चांद को पकड़ के अपनी तरफ खींच ले, नहीं, ये सूरज को जेब नहीं। वाले लैलु साबिकुन नहार, और ना रात सबकत ले जाती है दिन से, दिन से पहले रात आ जाए, रात आई और उसके बाद फिर रात आ गई, दिन चढ़ने से पहले दिन चढ़ने लगा और फौरन ही रात आ गई, दिन को उसने चढ़ने ही नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर रात के बाद दिन है और हर दिन के बाद रात है। और देखो ये कैसे, हालांकि कितना बड़ा कुर्रा है, इतनी उसके अंदर पावर है सूरज में, लेकिन वो फिर भी चांद को अपने अंदर खींच नहीं लेता। सुबहान अल्लाह, ये जो ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये किसी अलीम जात का ही काम हो सकता है ना, किसी को वरना क्या पता, किसी इंसान के जिम्मे लगाए उसको क्या पता कितने डिस्टेंस पे रखना है, कितनी इसकी पुल होनी चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए। और ये सिर्फ ये इसकी बात नहीं है, अल्लाह अकबर, इतने सितारे सैयारे इस कायनात में मौजूद हैं कि साइंसदान कहते हैं अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में हर सांस के साथ एक सितारे को गिने, तो उन्होंने कहा बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इतने सितारे हैं कि आप मर जाएंगे लेकिन सितारों की गिनती खत्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर, इतने हैं लेकिन आप तो नहीं कोई देख रहे, टकरा रहे हैं, मुसीबत पड़ी हुई है ऊपर, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं उड़ता फिर रहा है, कोई हमारे करीब आ गया है, कोई इधर आके गिरा पड़ा है, कोई उधर आप दौड़ता हुआ जाते हुए देख रहे हैं, रात को ऊपर कोई केओस मची हुई है, कहीं जंगे हो रही हैं, आप नहीं देखते कितनी कामनेस होती है। ये शोर जो होता है ना, ये तो जमीन पे ही होता है, कहीं हॉर्न का शोर, कहीं फैक्ट्रियों के शोर, कहीं किसी चीज का शोर, लेकिन आसमान पे देखें कितना सुकून है, कितनी हार्मनी है, कितनी डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज। क्या ये एक रब के होने का पता नहीं देती? फिर कैसे ये एथिस्ट कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है? ये तो वो अपनी अकल को ही झुटला रहे हैं, क्योंकि सारी कायनात बता रही है कि एक रब है इसको चलाने वाला। वह कुल्लुम फी फलक यसबहून, जो सूरज को पूजते हैं वो खुदा के लिए, आज तो अकल कर लो, आज तो साइंस ने भी बता दिया सूरज से भी बड़े बड़े सितारे हैं, तुम किसको पूज रहे हो फिर? कोई चांद को पूजते हैं, हाँ ऐसे लोग हैं चांद को सूरज को पूजने वाले हैं, और चांद तो बहुत ही छोटी चीज है, वो तो जमीन से भी छोटा है, उसी को पूजने खड़े हो गए। तो सूरज को क्या पूजते हो, इससे भी बड़े बड़े कायनात के अंदर सितारे सैयारे हैं, फिर क्या करोगे तुम? तो वो तो वो पुराने जमानों की बातें, जब इंसानों ने सूरज को देखा तो सोचा अरे यही खुदा होगा, तो उसको ही पूजने बैठ गए, यही उनको बड़ा नजर आया। और आज तो साइंस ने और बहुत सारी चीजें कह दी, फिर किस चीज को पूजोगे?
फिर इसका मतलब है एक जात, एक हस्ती ऐसी है जो इन सबसे ऊपर है ना, जो सबको ही चला रहा है ना, सूरज सबको चला रहा है, वो तो उन्होंने बताया। ये तो बहुत छोटी चीज है ये सूरज इस कायनात में, बल्कि ये पूरा जो हमारा निजामे शमसी है, सोलर सिस्टम, ये बहुत छोटी चीज है, कुछ है ही नहीं, इसका तो कोई वक्त ही नहीं है कायनात के सारे निजाम के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लू फी फलक यस्बहून, हर एक अपने अपने ऑर्बिट में देखो तैर रहा है। और सुबहान अल्लाह, जब इनकी उस वक्त कहाँ पता था, ये दलील है इस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, ये दलील है इस बात की ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, सच्चे नबी हैं। किस तरह से दलील है? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी ये बातें पता थी, इसका मतलब आपके पास कहीं से तो आता था इल्म, आपको थोड़ी साइंस का पता था, आपको तो नहीं पता था कि ये जोड़े जोड़े हैं, हर चीज बॉटनी में भी हर चीज के जोड़े जोड़े हैं, आपको थोड़ी पता था कि ये सब चल रहे हैं। किसी ऐसी जात ने ही बताया ना जिसको ये सारा इल्म था। तो आप सच्चे रसूल हैं और ये कुरान सच्चा है, क्योंकि ये कुरान में ये बातें हैं। हर एक अपने फलक में तैर रहा है, और वाकई चल रहा है नहीं कहा गया, तैर रहा। और तैरना उसमें क्या होता है, स्मूथनेस, स्विफ्ट, हर चीज वाकई अपने फलक में। अच्छा, फलक भी सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, फलक जो है ना बिल्कुल राउंड चीज को नहीं कहते हैं, फलक ओवल चीज को कहते हैं, ओवल। तो अल्लाह अकबर के हर एक ऑर्बिट देख लें, बिल्कुल गोल नहीं है, हर एक का ऑर्बिट ओवल है, बेजवी, सुभान अल्लाह। तो ये किसको पता था, अल्लाह अकबर। फुल कहते हैं ना कश्ती को, तो कश्ती का भी देख लें किस तरह से होता है, बिल्कुल राउंड तो नहीं होती। तो कितना जबरदस्त निजाम है जिसमें हर चीज जकड़ी हुई है, इस निजाम से बाहर नहीं निकल रही, ना दिन रात से पहले आ रहा है, ना रात दिन से पहले आ रही, हर 2 रातों के दरमियान फासला है दिन का, हर 2 दिनों के दरमियान रात का फासला है। कितना बड़ा सबक है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। अल्लाह अकबर, आप देखें जब हम इस निजामे कायनात को देखते हैं और हम देखते हैं कि वाकई सूरज चांद और दिन और रात और ये हर एक की जो गर्दिश है, हर एक जो अपने ऑर्बिट में चल रहा है, और इससे हम साइंस से आज इस चीज को समझ पाते हैं, और भी ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं, तो इसके बाद होना ये चाहिए कि इंसान अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करे, इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, इंसान उस रब के सामने झुक जाए और उसका जलाल और उसकी अजमत और उसकी बड़ाई उसके दिल में भर जाए, ये सब कुछ होना चाहिए इसका रिजल्ट। तो हम देखते हैं कि इसके बावजूद कि इंसान आज इतना इल्म हासिल कर चुका है, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा कि इंसान अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लग जाए। इतनी निशानियां देख के भी, रात नींद के लिए बनाई, दिन को काम के लिए बनाया, गर्मियों के दिन लंबे और रातें छोटी, सर्दियों के दिन छोटे और रातें लंबी, कोई तो है जो बना रहा है ये निजाम। और अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है इन सब चीजों के जरिए, हमारी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज कर दिया उसने, रात सोना है और दिन को काम करना है। ये अलग बात है कि हम इसका मतलब रात जो है सोने के लिए, दिन सोने के लिए नहीं है, दिन जागने के लिए, काम करने के लिए। हाँ, जरूरत हो कोई दिन में सोने की, बीमार है कोई, या रात को जागा हुआ है जिस किसी वजह से, कोई इबादत कर रहा था, कोई पढ़ रहा था, रमजान की जैसे रातें हैं तो तब दिन को सो सकते हैं, वरना काम के लिए दिन है। लेकिन इंसान अपना निजाम इसको जब उलट कर देता है ना, तो उसको खुद नुकसान होता है। एक जगह लोगों ने बताया कि 12 बजे क्लास होती है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं औरतें आ पाती क्योंकि सोई रहती हैं, सोई रहती हैं कैसे कि वो उठती ही नहीं है, बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं, सो जाती हैं तो क्या 11-12 बजे उठती हैं,
अल्लाह अकबर, तो काम किस वक्त करेंगे? एक दिन तो सोना है, फिर उठना ही नहीं है। ये जिंदगी तो इंसान को किसी काम करने के लिए बनाई गई है, सोने के लिए नहीं है ये, कि हमें जरा सा टाइम मिले तो सोने बैठ जाए, भाई सोने के लिए लेटे पड़े। क्योंकि क्या इतना ही बस काम था कि बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद सो जाए। तो ये देखें कि ये अल्लाह ताला ने निजाम हमारे लिए, कायनात के, हमें सिखाने के लिए, हमारे लिए डिसिप्लिन के लिए बनाए हैं। इनसे डिसिप्लिन सीखें और अपनी जिंदगियों में भी डिसिप्लिन लाएं। और ये देख लें कि सूरज चांद अलग अलग ऑर्बिट्स में चल रहे हैं। जरूरत नहीं है कि अगर मेरे पास कुव्वत है तो मैं कमजोर को दबा लूं और उसकी हस्ती को खत्म कर दूं। सूरज इतनी पावर रखता है कि चांद उसके सामने कुछ भी हस्ती नहीं है। चांद अगर सूरज के अंदर फेंक दिया जाए ना, तो चांद मिट जाएगा, सूरज को फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद सूरज चांद को पुल करके खत्म नहीं कर देता। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, अपने अपने फलक में तैरें, अपनी अपनी जगह पे काम करें, अपने अपने मैदान में रहें, दूसरों के अंदर मुदाखलत ना करें। चाहे आपके पास कितनी भी पावर है, दूसरे को मिटाने की कोशिश ना करें, दखल अंदाजियां ना करें। कायनात सिखा रही है ये हमें। और देखो सब फ्लोट कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। कैसे? इनके पास तो कोई चीज भी नहीं है, किस चीज पे खड़े हैं? बगैर किसी सपोर्ट के दौड़ रहे हैं। वो चीज देखते हैं आपके सूरज को, जिस चीज ने होल्ड किया हो, या जमीन को होल्ड किया हो, हवा के अंदर घूम रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और फिर देखें, पहले अल्लाह ताला ने जमीन को दिखाया शुरू में। देखे ना, कि जैसे एक एल्बम देख रहे होते ना, इससे पहचानो ये निशानियां। जमीन को दिखाया, नीचे देखो जमीन से क्या क्या उग रहा है, जमीन कैसे जिंदा हो रही। फिर जमीन से नहीं समझ आती ना, ऊपर नजर उठाओ, आसमान की तरफ देखो, उससे ही कुछ सोच लो। दिन और रात को देखो, सूरज और चांद को देखो, चलो उससे भी नहीं समझ आई, अपने सामने देखो। और निशानी क्या है? पहले जमीन की तरफ देखने की दावत दी गई तो आया तुमका लफ्ज आया, आसमान की तरफ देखने की दावत दी गई तो 37 आयत में फिर आया तुमका लफ्ज आया। अब अपने सामने देखो, ये भी निशानी है। वह आया तो लहुम अन्ना हमलना जुर्रिया तो हम फिल फुल्किल मशहून, उनके लिए ये भी निशानी है कि हमने सवार किया इनकी औलाद को कश्ती में भरी हुई। कैसी एक कश्ती? वो कौन सी कश्ती थी जो भरी हुई थी? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इनकी औलाद को उसके अंदर हमने सवार किया, इंसान की औलाद को। कैसे? एक इसका माना ये है कि जितनी भी औलाद उसके बाद पैदा हुई, जितने भी इंसान पैदा हुए, वो उस वक्त कहाँ थे? उन्हीं नूह अलैहिस्सलाम और जो उनकी साथी थे, जितने लोग कश्ती में थे ना, उन्हीं की औलाद से सारे पैदा हुए हैं। इसीलिए आदमे सानी उनको कहा जाता है ना, कि आदम अलैहिस्सलाम से तो इंसानियत चली, लेकिन उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग कश्ती में थे, बस उनसे ही इंसानियत चली है। बस तो ये जो सारी औलाद, नस्ले इंसानी, नस्ल जुर्रियत, नस्ल को भी कहते हैं ना, ये जो सारी नस्ल है ना चली, ये उनसे चली, उनको हमने बिठा दिया था कश्ती में। अगर उस दिन वो ना बचते तो कोई भी इंसान इनके बाद ना होता। ठीक है। दूसरा, जुर्रियत का माना एक ये भी है, आबाओ अजदाद। तो यानी हमने उनके आबाओ अजदाद को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया था। ये अल्लाह ताला की निशानी है कि उस दिन अल्लाह ने उनको बचा लिया और डूबने नहीं दिया, वरना आज हम यहां पे ना होते। वह खलकना लहुम मिन मिस्ली ही मा यरकबून, और हमने पैदा किए, ये भी निशानी है। ये सारी निशानी है ना, तीन जगह पे ये निशानी का लफ्ज आया है, और तीनों में आप देखें सारी डिस्क्रिप्शन, पहले जमीन की निशानियों की, फिर फिर आयत उनका लफ्ज आया आसमान की निशानियों की, अब आयत उनका लफ्ज आया, तो अब अपने सामने देखो कि देखो कैसे हमने तुम्हारे लिए और भी सवारियां पैदा कर दी, जिनको तुम जिन पे सवार होते, इनकी मानिंद जैसे कश्ती की तरह, मतलब जैसे कश्ती पे सवार हो जाते हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितनी और चीजें, मसलन है हवाई जहाज हो गए, ट्रेनें हो गई, गाड़ियां हो गई, ट्रक हो गए, आबदोजें हो गई, कितनी कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी, हमने पैदा की, हम तो कहते हैं हमने पैदा कर दी। नहीं, ये भी सब अल्लाह ताला ने फरमाया हमने पैदा की, यानी इसके लिए जो मटेरियल दिया वो भी अल्लाह ताला ने दिया, जो अक्ल समझ दी वो भी अल्लाह ताला ने दी। ये जितनी सवारियां आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसके अलावा जितनी ऊंट हैं, घोड़े हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। जो कश्तियां ही नहीं पैदा करती हैं, और भी बहुत सी सवारी के चीजें हमने पैदा की हैं। और फिर ये भी आता है ना कि अल्लाह ताला वो पैदा करेगा जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं, और आज भी आगे आगे और चीजें आ रही हैं, कोई आप देखें आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, या और पता नहीं आगे आगे क्या चीजें आई ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहले लोग तो जहाजों को तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि कोई चीज आसमान में ऐसे उड़ रही होगी, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने ये भी हमारे लिए पैदा कर दिया। तो